आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम हुआ समाप्त। आखिरी दिन रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह समेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की जनसभाएं। आखिरी चरण के मतदान के लिए कल मतदेय स्थलों को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए दी जाएंगी मेडिकल किट। सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आज चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई, 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी तथा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किए रामलला के दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण की 13 सीटों पर मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इसी क्रम में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन यादव ने आज कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज में रोड शो किया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज महाराजगंज और घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 संसदीय सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज समेत दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान होगा। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सातवें चरण की ये 13 सीटें प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में आती हैं। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, विशेष तौर पर सोनभद्र जिले में, जिसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से मिलती हैं। गोरखपुर और कुशीनगर जिले की पड़ोसी देश नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी के जवान गहनता से जांच कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर जाने को कह दिया गया है, जो वहां के वोटर नहीं हैं। जिन 13 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा, उनमें से 11 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं, वहीं घोसी और गाजीपुर सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा था। आखिरी चरण के मतदान में कई दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म स्टार रवि किशन, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार अजय राय, अफजाल अंसारी, पिंटू सैंतवार, वीरेन चौधरी, सनातन पांडे और रमेश बिंद शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को 13 लोकसभा सीटों के साथ ही दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सातवें चरण के मतदान को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए कल मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके लिए सातवें चरण के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शर्मा ने आखिरी चरण के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सातवें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके पारिवारिक जन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री शाह ने उपस्थित दर्शनार्थियों से भी मुलाकात की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए इन पर 14 लाख जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। अभी आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। साल 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। साल 2019 में 12 लोगों ने थानागंज कोतवाली में इस मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर घरों को जबरन खाली कराया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में काफी अंतर आ गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद कहा कि अयोध्या आकर खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वे प्रभु का दर्शन करने पहुंचे हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन पर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि ध्यान लगाना और प्रार्थना करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये हमारी संस्कृति है, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी राजनीति नजर आती है। प्रदेश में लू और तेज गर्मी ने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में झांसी में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 1984 में झांसी में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले जून 1979 में इतना तापमान प्रयागराज में दर्ज किया गया था। लखनऊ मौसम केंद्र वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि तापमान में अब और बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी।
अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1984 में 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पूरे बुंदेलखंड रीजन में तापमान में बढ़ोतरी हुई और ये पिछले 50 सालों का या ऑल टाइम हाई टेम्परेचर इस बार दर्ज किया गया। बुंदेलखंड रीजन का जो सदर्न पोर्शन था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पिछले 3-4 दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन तापमान में जैसे कुछ बादलों की आवाजाही हुई, जिसे जो पश्चिमी विंड थी वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर पड़ रही है, जिसके वजह से तापमान में गिरावट शुरू हो गया 2 से 3 डिग्री, लेकिन अभी भी हीट वेव या लू का वार्निंग है जो कि कल तक रहेगा। उसके बाद जो चेतावनी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसी क्रम में लखनऊ के केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर विभाग में आज प्रेस वार्ता कर तंबाकू के सेवन और धूम्रपान से सेहत को होने वाले गंभीर नुकसानों के बारे में जानकारी दी गई। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश ने बताया कि भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे हर साल देश में लगभग 12 लाख मौतें होती हैं।
31 मई हर वर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है और इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि 80 लाख से ज्यादा मौतें दुनिया भर में प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन की वजह से हो रही हैं और 14 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बर्डन दुनिया भर में इस वजह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ी समस्या हमारे बीच में है।
आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्टन के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। ये दिन सत्य और साहस के साथ जनकल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाले हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है। उदंत मार्तंड का हिंदी प्रकाशन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम हुआ समाप्त। आखिरी दिन रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह समेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की जनसभाएं। आखिरी चरण के मतदान के लिए कल मतदेय स्थलों को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए दी जाएंगी मेडिकल किट। सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई, 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी तथा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किए रामलला के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।